इसके बाद आयत नंबर 24 से 26, दो मिसालें हैं। कुरान पाक का मिजाज तमसीली है। तमसीली किसको कहते हैं? एग्जेम्पलरी, एग्जाम्पल दे के। जैसे एनालॉजीज होती है ना, हम को बात मिसाल से समझ लें तो मैं नहीं भूलती। इसलिए पहले इनका खुलासा करेंगे। बहुत कुछ है इन दो आयतों में। इस पर मैंने चार चार दिन के भी सेशन दिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वेबसाइट पे आप जाएं पुराने लेक्चर्स में, तो फ्रूट्स ऑफ ईमान एक सीरीज़ है, 22 फ्रूट्स ऑफ ईमान। इन्हीं आयतों पे, यानी शायद मैंने सबसे ज़्यादा इन्हीं आयतों पे दर्स दिया, लेकिन आज हम इसको तफसीर के एंगल से और ख़ास तौर पे इस एंगल से पढ़ेंगे कि अब हम कुरान के साथ जुड़ गए तो अब हमें दीन इस्लाम की किस चीज़ को कितनी अहमियत देनी है, कहाँ लेना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम फ़राइज़ को पीछे डाल के नवाफिल के पीछे भाग रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा हराम हमारी ज़िंदगी में आम होता है और हलाल की कदर नहीं है। तो आइए ज़रा आयत को खुलासे के साथ देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहु तआला शऊर को बेदार करते हैं हमारे और कहते हैं अलम तारा, क्या नहीं तुमने देखा। वही मतलब है, गौर करो। ये अंदाज आपको कुरान पाक में बहुत जगह, इधर क्या है अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा। क्या कैफ दरबल्लाहु मसलन, कैसे बयान करता है अल्लाह मिसाल, किसकी, कलीमतन तैयबा, कलमा तैयबा की। कलमा तैयबा से यहाँ क्या मुराद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों, आप देखिए कि कलमा तैयबा जो हमारे कल्चर में भी जो 6 कलमे मारूफ है ना, उसमें पहले कलमे को क्या कहते हैं, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह। बचपन से जुमला सुनना ना, थोड़ा सा समझ लीजिए। कलमा तौहीद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हम मुसलमान इस कलमे को पूरा कैसे पाते हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह कह के, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सवाल पैदा होता है कि इसको कलमे तैयबा क्यों कहते हैं। इसलिए इस कलमे को पढ़ते ही दिल पाक हो जाता है, कुफर की, निफाक की, हराम की, गुनाहों की आमेजिश से ना सिर्फ ये कि ज़ुबान पाक होती है बल्कि दिल बदलता है, दिल पाक हो जाता है। और अगर दिल पाक नहीं तो फिर वो कलमा ऊपर ही ऊपर है, अंदर नहीं है। तो गोया के हदीस में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, अफसलो जिक्र। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ सिर्फ इससे मुराद ये लिप सर्विस कलमा नहीं है, बल्कि इससे मुराद तौहीद पर मबनी अकायद, नज़रियात और भलाई की हर बात, तैयब कलाम, हक की दावत, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, ये सब कलमा तैयबा। क्योंकि जिसके दिल में खुद अल्लाह की बड़ाई आ जाएगी वो ये सारे काम करेगा। खैर, कैसा है ये कलमा तैयबा, का शजरतिन, एक दरख्त की तरह। कैसा है वो तैयबा, दरख्त पाक भी है, क्लीन एंड क्लियर दरख्त है, साफ सुथरा। असलुहा साबितुन, नंबर 2 लिख लीजिए, इसकी 4 सिफात आ रही हैं। पहली क्या है, शजरतिन तैयबा, पाकीज़ा दरख्त है। दूसरी इसकी कैफियत है असलुहा साबितुन, इसकी जड़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। असल अरबी ज़बान में कहते हैं रूट को, असूल भी इसी से है। जो रूल्स होते हैं ना, वो किसी भी इदारे की जड़ें होते हैं, किसी भी घर के रूल्स, किसी भी इंसान के जो रूल्स हैं ना, उसको डिफाइन करते हैं। बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि उसी की बेस पे आपकी इमारत बनेगी। तो गोया के असल, असूल, जड़ें, साबित मैंने सबता, गड़ी हुई, डीप रूटेड के मानों में इधर लिख लीजिए। तीसरी कैफियत क्या है इसकी, वफर उहा फिसमाई, और इसकी शाखें आसमान तक फैली हुई हैं। फरा कहते हैं ब्रांच को, फरा उसी से भी जमा फरुआत। आपने कभी कोई किताब पढ़ी हो इस्लामिक फिक पे, तो उस पे होता है फरुआत, असल कर छोड़कर फरुआत में पढ़ना, मतलब यह है कि असल इश्यूज को छोड़कर साइड इश्यूज में उलझना। तो यहाँ इससे मुराद फरुआत से क्या है, यानी बहुत ज़्यादा झाड़ है, नीचे से वो दरख्त डीप रूटेड है, नीचे उसकी जड़ें फैली हुई हैं, फिर स्टेम पे, लेकिन उस दरख्त के ऊपर क्या है, एक समझें कि शेल्टर है, बहुत ज़्यादा उसका साया है। चौथी इस दरख्त की खूबी के अगली आयत में, तूतीकुलहा कुल्लहीन बिज़्नी रब्बिहा, ये दरख्त हर फसल में अपना फल लाता है लेकिन अपने रब के हुक्म से। यानी माली या किसान नहीं ये कर सकता, بلکہ اللہ کے حکم سے پھل بھی آتا ہے، یعنی صدا بہار ہے، یہ لکھ لیجئے، ایور لاسٹنگ. گرمی سردی کا، دھوپ چھاؤں کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. بس مثال ختم ہوئی اور کہہ دیا وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں. اب اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ آپ دیکھیے کہ ایک درخت کو اگانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیج کی. لکھیے ایسے، ایک ترتیب سے لائن بنا لے، پھر اس کے آگے ہم لکھیں گے. نمبر ایک بیج، نمبر دو زمین جہاں بیج ڈلے گا، پھر نمبر تین ہوا، پانی، سورج کی روشنی. بیج کیا ہے؟ ایمان. اب ان کے آگے فلنگ کریں. ایمان کا بیج ہوتا ہے. مٹی کیا ہے؟ مومن کا دل، جس میں اللہ کی محبت آتی ہے. پھر اس کے بعد پانی کیا ہے؟ وحی کا پانی، انزلناہ من السماء، علم کا پانی جاتا ہے تو ایمان کا بیج جلدی اٹھتا ہے. روشنی کس چیز کی ہے؟ ماحول یا روشنی آپ کہہ لیجیے، قرآن اور اللہ کی محبت کی روشنی. ہوا چاہیے ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ ماحول، جس کو آپ صحبت کہتے ہیں، آپ کے اراؤنڈ کیسے لوگ ہیں. جب یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ایک درخت شروع میں کیسا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیے کہ آپ نے کبھی بھی گارڈننگ کی ہو، ایک چھوٹے سے بیج سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور بعد میں ایک اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی یہ درخت اتنا بڑا ہوگا. اور پھر آپ اس کے بعد آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کیا کچھ دکھتا ہے، اتنا بڑا درخت بنتا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں جب بھی کبھی درختوں کو دیکھو، اور میرا فیوریٹ شغل جو ہے نا وہ درختوں کو دیکھنا ہے. لوگ پھولوں کو دیکھتے ہیں، مجھے پھولوں میں پھول تو ایک لگتا ہے، لیکن جو درخت ہے نا وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پھولوں کا ہی گلدستہ ہے. کہ جب کوئی بھی بیج درخت بنتا ہے تو اس کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں. آپ کو چھوٹا سا پریزنٹیشن دکھاتے ہیں، پھر اس میں آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا. اور اس میں اب اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جانا چاہیے کہ اسلام کدھر سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہنچتا ہے. آپ دیکھیے کہ درخت کو بیج سے درخت بننے تک کے مراحل کو لے لیں، یہی ایمان کے مراحل ہوتے ہیں. جتنا زیادہ آپ ان ساری چیزوں پہ آئیں گے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عام کیا ہے، اتنا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ دیکھیے ایک پریزنٹیشن ہے، آپ کو نیٹ پہ کہیں بھی گوگل میں ڈالیں گے نا اسلام اے ٹو زی نور القرآن کے نام سے، تو یہ آ جائے گا. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے مٹی. زمین کیا ہے؟ بندہ مومن کا دل. بیج اللہ کی محبت یا جس کو ایمان کہیں گے. یہ جو پانی دیا جا رہا ہے یہ علم اور ہدایت کا، وحی الہی، ٹھیک ہے. پودے کو پنپنے کے لیے اچھے بیج، زرخیز زمین، عمدہ کھاد، پانی اور سورج کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ ہونا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پودا نہیں چلتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے وہ بیج کدھر بدلا، اس میں سب سے پہلے جڑ بنی، اصلحا ثابت. یہ دیکھیے ایک بیج کی اتنی جڑیں ہیں. یہ جڑیں جیسے زمین کے اندر جاتی ہیں نا، اسی طرح مومن کے دل میں عقیدے کی صورت ڈھلتی ہے. یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ جڑوں سے مراد عقیدہ ہے. البغض فی اللہ، الحب فی اللہ، اس کو تین حصوں میں آپ لکھ لیں، تعلق باللہ، تعلق بالرسول اور ایمان بالآخرہ. جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنا آپ کا عمل صالح کا درخت بن پے گا. مکہ کے 13 سال میں جو دین سکھایا گیا نا وہ جڑوں کو مضبوط کرنے والا تھا. جب جڑ مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر درخت بڑی بڑی آندھیوں میں بھی کھڑے رہتے ہیں. اتنی مارے کھائیں، اتنا اسلام کے اوپر نام پر ظلم سہا، صحابہ کیوں نہیں ہلے؟ کیونکہ اسلحہ ثابت ہو. جب تک دین کی جڑیں دل میں نہیں آئیں گی کبھی عمل صالح نہیں لگے گا. ہم اس کو تقابل کریں گے بعد میں، مومن اور درخت کا، لیکن یہاں صرف اس کو سمجھیے. फिर आप देखिए कि ये पतली सी डंठल है ना, अब ये निकली इसमें से। आपने किसी को भी तबलीग करनी है, अपने बच्चों को, शोहर को, नॉन मुस्लिम्स को, मेड्स को, किसी दुनिया के बंदे को, जिसमें आप खुद भी कह लें, अगर आप दीन की तबलीग करें तो सिर्फ इन तीन मौजूद पे बात करें, आखरत की बात, मरना जीना, अल्लाह से प्यार और रसूल की अहमियत। क्योंकि जिसके ये तीन काम पक्के हो गए ना, फिर आगे देखिए क्या होगा। फिर आप देखिए कि इस छोटे से बीज ने किस तरह बाहर निकल कर इजहार किया अपना। पौधे को बाहर निकलने के लिए मुनासिब माहौल की ज़रूरत होती है ना, तो इसीलिए ईमान नेकियों के माहौल में फलता फूलता है। इसके बाद का मरहला देखिए, ये ज़रा दरख्त की जड़ें देखें कहाँ तक चली गई हैं। ये है असलोहा साबित। वक्त के साथ साथ जितना दरख्त ऊपर बढ़ रहा होता है ना, उतनी उसकी शाहें ज़मीन में फैल रही होती हैं। ईमान बढ़ने के साथ साथ इंसान के दिल में अल्लाह, उसके रसूल की मोहब्बत और आखिरत पर यकीन मजबूत होता है। जो आयत में असलोहा साबित है, ये आयत भी देखिए, पिक्चर उसकी बेहतरीन तस्वीर है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जड़ें ऐसे पकड़ के बंदा मोमिन के दिल को जकड़ लेती हैं। ये काम कर दें आप, अगर आपने बच्चों को संवारना है, शोहरों को बदलना है, बीवियों को इसलाह करनी है, माशरे को ठीक करना है, सिर्फ आप लोगों के दिल पकड़ लें। और उसमें दिल पकड़ने में वही बात जो पीछे हमने देख ली कि अल्लाह, उसका रसूल और उसकी आखरत, ये तीन चीज़ों पे काम करें। मत कहें नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, क्योंकि एक दफ़ा जब ये दिल में आ गया, फिर यही पूछेगा इंसान कि अल्लाह क्या चाहता है, रसूल को क्या पसंद है और मेरी आखरत में क्या काम आएगा। इसके बाद आप देखिए कि ये दरख्त में से तना बना। इस्लाम के दरख्त में तने की हैसियत इबादत की है, दीन के बुनियादी हिस्से। अब आप देख रहे हैं नीचे क्या था, अकीदा। सेकंड फेज है दीन का इबादत, जिसको रिचुअल्स कहेंगे। इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दुआ, जिहाद, ये सब आते हैं। जितनी दिल में मोहब्बत की जड़ें पक्की हैं, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात पक्के। क्यों सहाबा को नहीं कहना पड़ता था नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो? क्योंकि नीचे जड़ें ही मजबूत थी, जड़ खुद वो काम करा लेगी जो आप भूल के नहीं करा सकते। तो गोया के अगर जड़ ना हो तो नमाज मुश्किल लगती है, सब कुछ ही मुश्किल लगता है। फिर उसके बाद आप देखिए तीसरी चीज़ ऊपर जाके, ये देखिए शाखें शुरू हो गई। शाखें क्या है? मामलात। ये दीन का तीसरा बुनियादी हिस्सा है, डीलिंग विद अदर्स, लोगों के साथ। इसको आप हकूकुल इबाद भी कह सकते हैं। अब ये शाखें जो हैं, ये लोगों से मामले, कौन कितना दीनदार है इसका पता उसके लोगों से, मामले से पता चलेगा। नीचे अल्लाह की मोहब्बत थी, इजहार हुआ इबादत की सूरत में, और उसका दुनिया में निफाज होगा मामलात की सूरत में। ये बंदा मामला कब अच्छा करेगा लोगों से? जब इसकी इबादत स्ट्रांग होगी। और इबादत कब करेगा? जब अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। फिर उसके बाद देखिए पत्ते लगते हैं। पत्तों का काम क्या है? फिजा में से कार्बन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ये मोमिन की नेकियां, इखलाकियात, ये चौथा। हमारा दीन चार चीज़ों पे मिलता है, अकायद, इबादात, मामलात और इखलाकियात। सदका खैरात खैर लाता है। ये दरख्त क्या दे रहा है लोगों को? फ्रूट्स दे रहा है। ये देख रहे हैं कहीं पियर लगी है, कहीं इसमें चेरीज लगी हुई है, कहीं केले लगे हुए हैं ना, ये मोमिन के फ्रूट्स होते हैं। पौधा जब तनावर दरख्त बनता है ना, तो ना सिर्फ ये कि माहौल की खूबसूरती में इजाफे का सबब बनता है, बल्कि धूप में छांव देकर ठंडक भी फ्राहम करता है। इसी तरह मोमिन भी दूसरों के लिए ठंडी छांव होता है। लोग मोमिन की मौजूदगी में बहुत कंफर्ट पाते हैं, घबराहट नहीं हो जाती कि अभी हमें कोई ताना ना दे दे, कोई चुगली ना कर दे, कोई इल्ज़ाम ना लगा दे। मोमिन पीसफुल होता है, लोग उससे थ्रेट नहीं फील करते। उनको पता है कुछ भी हम कर दें, लेकिन ये हमारे साथ अच्छा ही रखेगा अपना मामला। दरख्तों के पत्ते आप देख लीजिए कैसे कायनात को ऑक्सीजन देते हैं। मोमिन भी अपनी ज़ात से अमर बिल मारूफ करता है। अब अगर इसको सामने रखते हुए अपने नोट्स में आप एक कॉलम बनाएं, एक साइड पे लिख लें बंदा मोमिन और दूसरे पे लिख लें दरख्त। हम थोड़ा सा टैली करेंगे कुछ चीज़ों को कि कैसे दरख्त हमें फ़ायदा देते हैं, किस तरह दरख्त और मोमिन की मिसाल मिलती है। और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की मिसाल एक दरख्त की है। बुखारी की रिवायत इब्ने उमर से, आपने फरमाया कि बताओ वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन के मुशाबे है, जिसके पत्ते नहीं झड़ते, हर मौसम में फल देता है। तो सहाबा कराम खामोश हो गए। रिवायत इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं, उसमें से एक आधी रिवायत ही सुना के तकाबुल दूंगी। बुखारी की रिवायत है इब्ने उमर से, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे, आपने फरमाया मुझे बताओ वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान के मुशाबे है, जिसके पत्ते नहीं झड़ते ना जाड़ों में ना गर्मियों में, जो अपना फल हर मौसम में लाता रहता है। इब्ने उमर कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि मैं कह दूँ कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने देखा कि इस मजलिस में अबू बकर हैं, उमर हैं, और वो सब खामोश हैं, तो मैं भी चुप रहा। फिर अल्लाह के नबी ने खुद ही फरमाया कि वो दरख्त खजूर का दरख्त है। जब यहाँ से उठकर चले तो मैंने अपने वालिद यानी उमर से कहा, अब्बा मैंने भी यही सोचा था। तो हज़रत उमर बोले, प्यारे बच्चे, अगर तुम ये जवाब दे देते तो मुझे तो तमाम चीज़ों के मिल जाने से भी ज़्यादा महबूब था। कि मेरे बच्चे को अल्लाह ने इतनी समझ दी कि जो नबी के दिल में था वही बात उनको समझ आ गई। बस रिवायत में तो कहते हैं कि मैं इसलिए चुप रहा कि मैं इस मजलिस में कम उम्र था। तो क्या पहली बात पता चली कि अगर आपको कोई बात समझ आए तो इस कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना चाहिए कि हम छोटे हैं और दूसरे बहुत बड़े हैं। अब आप यहाँ देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इब्ने अबी हातिम में, किसी ने आपसे अर्ज किया कि मालदार लोग तो दर्जात में बढ़ गए, आपने फरमाया कि याद रखो अगर तमाम दुनिया की चीज़ें लेकर अंबार लगा दो तो भी वो आसमान तक नहीं पहुंच सकते, यानी कितना भी माल सदका कर दो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तुझे ऐसा अमल बताऊं जिसकी जड़ मजबूत और जिसकी शाखें आसमान में हैं। इसने पूछा वो क्या है, तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, हर फर्ज नमाज के बाद 10 बार कह लिया करो, जिसकी असल मजबूत और फरा आसमान में। कभी हम इन नेकियों की अहमियत देते हैं? नमाज ही पढ़ लें तो बड़ी बात है, सलाम फेरने से पहले सर पे लोग सवार होते हैं। कितने लोग हैं जो ये 33 वाली रिवायत पे अमल कर पाते हैं? मुश्किल हो जाता है यकीन करें 33 भी पढ़ना। और इस रिवायत में क्या, 10 बार अगर पढ़ लो तो ये अमल सारी चीज़ें सदका करके अंबार लगाने से भी बड़ी नेकी है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि वो पाकीज़ा दरख्त जन्नत में है, हर वक्त अपना फल लाए, यानी सुबह शाम या हर माह में या हर 2 माह में या 6 माह में या 7वें महीने या हर साल में, यानी वो मिसाल उसको अब टैली कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये मिसाल हमने सुन ली, दरख्त के साथ बात भी समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा अगर इसको एक ईमान वाले के साथ टैली करके देखें तो सबसे पहले देखिए कि दरख्त की खूबियाँ क्या होती हैं। दरख्त बतदरीज बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप, पहले बीज, फिर कोंपल, फिर पतली सी डंठल, फिर तना, फिर उसके ऊपर लकड़ी आती है और आखिर कितना सख्त होता है। इसी तरह मोमिन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। आपको अपनी ज़िंदगी में तदरीज लानी है, पहले अपने ईमान को पक्का करें, ताल्लुक़ बिल्लाह को पक्का करें, लोगों के देखने और ना देखने से बेनियाज हो जाए। जिसने ये कर लिया ना तो उसकी नेकियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। वरना आप देखिए कि आप दरख्त के नीचे जड़ें काट दें और ऊपर नेकियों के कुछ फल लगा दें, चंद दिन में सूख जाएगा दरख्त। इसीलिए हमारी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं, ज़रा सी मुखालफत से हम नेकी छोड़ देते हैं, ज़रा सी इख्तलाफी बात सुनी कहते नो मोर, घर बैठ के तस्बीह पढ़ लेंगे, घर बैठ के तस्बीह नमाज पढ़ लेंगे। हमसे नहीं होता ये काम, कितनी जल्दी हम हिम्मत हारते हैं। ज़रा काम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, लोग हमारी बात ना माने, डिसिप्लिन ना हो, कोई रूल्स टूटे, हम कहते ख़त्म, बस घर बैठो, अपने घर में बैठ के काम करो। मोमिन ऐसे कभी नहीं करता, अगर नबी ऐसे करते तो ये दीन ऐसे ना फैलता। फिर आप देखिए कि दरख्त का बढ़ना शाखों और पत्तों का इजाफा है ना, सबसे पहले उसमें लकड़ियाँ होती हैं, फिर वो छोटे छोटे से बीज लगते हैं ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ते बनते हैं। और इसी तरह फिर पत्ते भरते हैं तो अखीर में फल लगता है। इसी तरह मोमिन का इजाफा सबसे पहले मार्फत इलाही में होता है। अल्लाह की मार्फत मिलती है ना, तो उसके बाद मोमिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर नमाजों में मज़ा आता है, फिर सदका करके अच्छा लगता है, फिर लोगों से नेकी करके मज़ा आता है। फिर इसी तरफ देखिए कि दरख्त की एक खूबी, दरख्त की खुराक क्या आपको पता, एक लफ्ज़ में बता सकते हैं लफ्ज़ दरख्त क्या खाता है? वो तो उगने के लिए। दरख्त की खुराक कार्बन डाइऑक्साइड है। आपके एटमॉस्फेयर की नागवार तरीन चीज़ दरख्त लेते हैं। वो तो बनने के लिए चाहिए थे ना बीज पत्ता, अब तो बन गए। ये जितने दरख्त बाहर हैं ये आपको पता कैसे हैं, बाकी बातें और हैं, लेकिन जो हम सांस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं ना, दरख्त उसको लेता है। जब वो ले लेते हैं ना तो फिर उसके इर्द गिर्द सुकून होता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्ज़ा हो दरख्तों तो उसके करीब जाओ, जिनको सांस का भी प्रॉब्लम है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनको दरख्तों के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ फ्रेश ऑक्सीजन होती है। लेते कार्बन डाइऑक्साइड है, देते ऑक्सीजन है। इसी तरह मोमिन किसी भी सोसाइटी में नहीं अनिल मुनकर करता, वहाँ की खराबियों को चुनता है, वहाँ की बेकार चीज़ों को लेकर वहाँ खैर देता है। मोमिन ताने सुने, इल्ज़ाम सुने, परेशान कुन बातें सुने, उसने जवाब में लोगों को मुफीद चीज़ें देनी है। तो गोया के फिजा से बेकार गैस को लेकर एक आराम चीज़ देता है। हमने ऐसा करना है। सबसे मुश्किल काम है मेरे ख्याल में जो लोगों को सारी बातों से दूर कर देते हैं कि ये नियम से होता। अच्छे हालात में काम करना बहुत आसान है, बुरे में नहीं कर सकते। सब कह में आप अच्छे, कोई कुछ ना भी कहते हम काम करते रहते हैं, लेकिन जब लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर हम कहते नो एक मिनट नहीं मैं और रह सकती। फिर दरख्त की एक खूबी देखिए कि दरख्त रिएक्शन नहीं देता, रिएक्शनरी नहीं होता। आप देखिए कि आप दरख्त को पत्थर फेंकें, वो जवाब में आपको फल फेंकता है। बनना है तो दरख्त बनो, लोग तुम्हें तानों के इल्ज़ाम के पत्थर फेंकें, तुमने अपने मुख्तलिफ फल भेजने। इसी तरह मोमिन जैसे दरख्त रिएक्शन नहीं करता ना, तो मोमिन भी मुसीबत पर सब्र करता है, नेमत पर शुक्र करता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त के साए में लोगों को सुकून मिलता है। थके हारे मुसाफिर धूप की तमाजत से बेचैन हुए हुए दरख्त के नीचे आते हैं तो गहरे साए में खुशी पाते हैं। इसी तरह मोमिन भी लोगों को साया देता है। लोग अपना दुख सुख उससे करके दिल हल्का करते हैं, लेकिन उनको ये यकीन होता है कि इसने आगे हमारी बात किसी और से नहीं करनी, हमें अच्छा मशवरा देना। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिससे हो जिक्र लाला में ठंडक वो शबनम। मोमिन शबनम होता है, मिस्ट, लोगों के वो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। मोमिन हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीता है। वो खुद खुश ना भी हो ना तो कहता है कि मैं दूसरों को खुशी दे रहा हूँ ना, यही बहुत है। फिर आप देखिए कि दरख्त की शाखें आपस में कितनी फैली होती हैं। दो दरख्तों को साथ जोड़ के देखिए, बात अब उनकी ब्रांचेज एक दूसरे के अंदर भी जुड़ती हैं लेकिन उलझती नहीं है। इसी तरह मोमिन लोगों के बीच में रहता है लेकिन उनसे उलझता नहीं है। फिर नेक्स्ट, जितने दरख्त किसी इलाके में ज़्यादा होंगे वहाँ का माहौल उतना ही खूबसूरत होगा, फ्रेश होगा। इसी तरह जितने मोमिन कहीं ज़्यादा हों वहाँ का माहौल खूबसूरत होगा, रोहमा बैन हो। एक ऐसी खेती कि जहाँ लोग खुशी पाएं, और हम ऐसे ही थे, हमारे साहब ऐसे ही थे। फिर आप देखिए कि दरख्त का कटना माहौल के लिए नुकसानदेह होता है। एक दरख्त कटता है ना तो कितना नुकसान हो जाता है। इसी तरह एक मोमिन की मौत उस सोसाइटी के लिए बहुत बड़े नुकसान का जरिया होती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि खोखले दरख्त जो होते हैं ना वो हल्की आंधियों में ही गिर जाते हैं। इसी तरह से कमज़ोर ईमान वाले भी ज़रा सी आजमाइश से खिर जाते हैं, दब के बैठ जाते हैं, सॉरी। फिर आप देखिए कि पौधे को ज़मीन की खुराक भी मिलती है, यानी नीचे से पानी ले रहा है, खाद ले रहा है, लेकिन आसमानी ग़ज़ा भी चाहिए उसको ऊपर से पानी की सूरत में। इसी तरह बंदा है मोमिन हर वक्त जिस्म और बतन के खाने पीने के तकाजे नहीं बल्कि ऊपर से रूह की ग़िज़ा भी लेता है। मोमिन ख़ुद भी कोशिश करता है, अपनी कोशिश और अल्लाह की मदद भी उसको मिलती है। फिर इसी तरफ देखिए कि कुछ भी ना आप दरख्त से लें, दूर से दरख्त को देखें ना तो दरख्त थकी हुई आँखों के लिए ठंडक का सामान बनते हैं। सब्ज़ रंग से आँखों को पता सुकून मिलता है। जिनके आँखों के प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स उनको फिर सब्ज़ रंग रिकमेंड करते हैं। देखो इसी तरह मोमिन के अच्छे अखलाक भी दूसरों के लिए खुशी का जरिया होते हैं, जिससे जिगरे लाला में हो ठंडक। वो शब्द फिर अब देखिए कि दरख्त कड़ी धूप में खुद खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को छांव देते हैं। दरख्तों को गर्मी नहीं लगती जब वो धूप में नहीं जलते लेकिन अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी तरह मोमिन दुखी लोगों के दुखों मुसीबतों को अपने ऊपर लेकर उनको तसल्लियां देता है। उसका दिल अंदर से तड़प भी रहा हो ना किसी की तकलीफ पे लेकिन अगले को कहता है नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, उसके साथ ही और ज्यादा उसको बेसब्रा नहीं कर देते। फिर अब देखिए कि दरख्त हवा की इम्प्योरिटीज को दूर करते हैं ना, हवा को प्योरीफाई करते हैं। मोमिन सोसाइटी की बुराइयों को दूर करते हैं। दरख्त माहौल का बैलेंस कायम रखते हैं, कितनी ऑक्सीजन कितनी कार्बन। आपको पता है कि रात को दरख्तों के पास नहीं जाना चाहिए, क्यों भला?
कार्बन
उस वक्त कार्बन निकलती है। तो मोमिन को क्या सिखाया कि तुम भी बैलेंस रहो, आधी आधी रात को जाग कर लोगों के घरों में महफिलें सजा कर उनके अगले दिन की नमाज ज़ाया ना करो। जिस तरह रात को दरख्त खतरनाक हो जाता है ना, इस तरह मोमिन का दूसरे के साथ रात को बैठना नुकसानदेह, हदीस में मना है। हम बाकी बातों में तो बहुत बात करते हैं लेकिन इस पर कभी गौर ही नहीं करते। कितनी ज्यादा गैर इस्लामी ये चीज़ है कि हमारी महफिलें रातों को सजती हैं। दिन को फायदा, रात को आराम। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त या तो किसी को फल देता है या छांव देता है या दोनों देता है। इसी तरह मोमिन किसी न किसी सूरत में अपने इर्द गिर्द वालों को फायदा ही देता है, चाहे रूहानी चाहे जिस्मानी। फिर आप देखिए कि दरख्त सहारा देता है, टेक लगा के लोग बैठ जाते हैं ना, कमर टिक जाती है उसके साथ। इसी तरह मोमिन दीन के रास्ते में चलने वालों को सपोर्ट देते हैं। आओ तुम नहीं हिलना, मैं तुम्हें पीछे दूंगी साइड, मैं तुम्हारी बैक पे रहूंगी, चलो कौन तुम्हें कुछ कहता है। यानी दीन के लिए मोमिन से बड़ा सहारा कोई नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दरख्त कुदरत पर इन्हिसार करता है, लोगों पे तो नहीं करता कि माली आएगा तो कुछ करेगा। दरख्तों को कभी किसी ने पानी दिया? छोटी छोटी उनको देना पड़ता है, ये जो फसलें उगती उनको देना पड़ता है, दरख्तों को नहीं देना पड़ता। इसी तरह मोमिन भी लोगों की बजाय अल्लाह पर इन्हिसार करता है। फिर दरख्त की एक और खूबी देखिए कि दरख्त एक ही सिमत में ऊपर बढ़ता है, इधर उधर नहीं फैलता हमारी तरह। और मोमिन भी दूसरों से बेनियाज, हनीफन इलल्लाह, फोकस्ड अल्लाह की तरफ होता है। उसका सारा रजू अल्लाह की तरफ होता है कि अल्लाह से मेरा कैसा मामला है। फिर इसी तरह बाद मुखालिफ दरख्त को पिछाड़ नहीं सकती, मुखालिफ हवाएं चलती हैं ना, तो आपने कभी देखा दरख्त यूं हिलते हैं, पत्ते हिलते जुलते हिलते जुलते। इस तरह मोमिन की भी जब जिंदगी में मुखालफतें होती हैं ना तो गिरता नहीं बल्कि झूमता, इंजॉय करता है। आप कहेंगे ये कौन सा बेवकूफ, ये कैसे होगा, ये अभी हमें नहीं समझ आएगा, आप ये समझ लें। लेकिन जितनी मुखालफत आएगी उतना आप मुस्कुराएंगे। कहते ना कि ना तुंदी वादे मुखालिफ से घबरा के ओकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हवा ना चले तो आपके जहाज भी नीचे गिर जाए, परिंदे भी गिर जाए। फिर आप देखिए कि दरख्त की जो रूट्स हैं या तना है उसका बाकी सब कुछ एक जगह जमा करें। मिसाल है एक दरख्त है, खाल छाल जड़ें पत्ते कितना ढेर लगेगा और उसके मुकाबले में फल कितना होगा, वह थोड़ा सा होगा ना। यानी फल बहुत थोड़ा सा होता है। इसी तरह एक ईमान वाले को अपनी जिंदगी में एफर्ट्स कोशिशें इनपुट बहुत डालना पड़ता है लेकिन फल बहुत थोड़ा होगा। और सब कुछ एक तरफ है, दरख्त छोटा सा फल देता है लेकिन मीठा होता है। तो मोमिन कम बोलता है मगर जो बात करता है वो पते की करता है, हर वक्त उल फुल नहीं बोलता। پھر آپ دیکھیے اگر ایک صاف ستھرا درخت اور خاص طور پہ اگر حدیث کو ساتھ ملا لیں, کھجور کا درخت بڑا سلجھا ہوا دکھتا ہے نا, ڈیسنٹ سا صاف, اس کی ادھر ادھر شاخیں بھی نہیں ہوتی. کبھی عرب ملکوں میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو اتنا ہی اچھا لگے گا. اسی طرح مومن بہت ڈیسنٹ ہوتا ہے, بکھرا شکھرا نہیں ہوتا, وہ عجیب و غریب نہیں دکھتا, بہت ڈیسنٹ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے درخت پر جتنا پھل زیادہ لگے درخت اتنا جھکتا ہے. ایمان والے کو جتنا رزق, علم, مال, تقویٰ, ورا ملتا جائے وہ اتنا ہی ہمبل ہوتا ہے, اتنا جھکتا ہے. پھر آپ دیکھیے درخت جتنا مرضی اوپر بڑھ جائے زمین سے اپنا تعلق نہیں توڑتا. اسی طرح مومن کو جتنی مرضی بلندی مل جائے اپنے اصل سے تعلق نہیں توڑتا. ہم تو ایک جھٹکے میں تعلق توڑ کے مار دیتے ہیں نا کہ پیچھے کرو, آپ کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بات اب اپنے سگے ماں باپ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ 21 سال تک جو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے. مومن کبھی نمک خوار نہیں ہوتا, محسنوں کے ساتھ تو مومن کا تعلق ہمیشہ احسان کا ہوتا ہے. درخت کے کٹنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے, زندگی میں تو سایہ دیتا ہے, پھل دیتا ہے, آکسیجن دیتا ہے, کٹ گیا تو فرنیچر. اسی طرح مومن زندگی بھر لوگوں کو فائدہ دیتا ہے, لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے لگائے ہوئے پودے, صدقہ جاریہ اور اس کے نیک اعمال انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت اگر سامنے رکھیں تو اس کو دیکھیں نا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے صحرا میں کھڑا ہوا ایک سنتری, بہت ڈیسنٹ طریقے سے وردی پہنا ہوا ایک فوجی ہے. مومن کے اندر وقار لازمی ہے, وہ ہلتا جلتا رہے گا, تڑپتا رہے گا تو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوگا. پھر اچھا بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا, اور میں اس وقت جو سوچ رہی ہوں نا اپنے امیجینیشن میں, وہ درخت کہاں سے دیکھ رہی ہوں, جہاز کی کھڑکی سے. کبھی آپ کا جہاز جب اترتا ہے یا چڑھتا ہے تو آپ ذرا ونڈو سے نیچے درختوں کو تو دیکھا کریں. بعض دفعہ ہوتا کہ دو درخت آپس میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ان کا اوپر سے جو جھاڑ ہے نا وہ سب مل جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے, لیکن جب نیچے دیکھیں تو جڑیں اور تنے فرق ہوتے ہیں. یہ ٹیم ورک ہے. مومن بھی دین کے کام آپس میں مل جل کے کرتے ہیں اور میں کا شکار نہیں ہوتے. انا یہ میں نے کیا, یہ میرا کام ہے, میں انچارج ہوں, میں بڑی ہوں تم چھوٹی ہو, یہ نہیں ہوتا. پھر ایک اور خوبی دیکھیے کہ درخت کٹنے سے پہلے آئندہ کے لیے بیج چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح مومن بھی دنیا سے جانے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے کہ میرا پتا تو کٹ رہا ہے لیکن میرا اکاؤنٹ اب میرے بچے کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا نیکیوں کی صورت میں. اسی لیے دیکھیے صحابہ کے بچے آگے آگے, پھر پہلے عمر تھے پھر ابن عمر آگے, عباس تھے تو ابن عباس آگے. تو مومن پیچھے نیک اولاد چھوڑنے کی فکر کرتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ درخت پھولوں کی طرح اتنے فینسی تو نہیں ہوتے دیکھنے میں, لیکن کارآمد بہت ہوتے ہیں. اسی طرح مومن کو ڈسپلے نہیں ہوتا, مومن کو شو پیس نہیں ہے, ڈیکوریشن پیس نہیں کہ مجھے دیکھو, کو ڈمی نہیں ہوتا مومن. مومن اپنے ظاہر میں خوبصورت بھی کیوں نہ ہو, اس کو فیلنگ ہی نہیں آتی کہ میں خوبصورت ہوں. اور میرے خیال میں خوبصورتی کی سب سے پیاری ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ خوبصورت وہ ہے جس کو اپنے خوبصورت لگنے کا احساس نہ ہو. اور اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد شیشہ دیکھ رہے ہیں اور مصیبت آ, فیس ٹائم کی محفلوں میں بیٹھے میں نے لوگوں کو اپنی تصویریں کھینچتے دیکھا, اپنی بھی ساتھ والوں کی بھی, ہر بندہ اپنے سحر میں مبتلا لگتا ہے. اللہ ماشاء اللہ, پہلے تو کوئی ایک دلہن کو لوگ دیکھ کے کوئی اس کے پیچھے منڈلاتے تھے, ہر ایک اپنے آپ کو پوز دیکھ کے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے, خوبصورتی ساری معصومیت میں. شکل و صورت اللہ نے دی آپ کو مجھے. درختوں کو آپ دیکھیے, کوئی بظاہر ان کے اندر فینسی پن نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کو وہ پیارے لگتے ہیں, ان کو خود فیل نہیں ہوتا. اس طرح مومن کو بھی بے نیاز ہونا چاہیے اپنے ظاہر سے. پھر آپ دیکھیے کہ کھجور کے درخت کا پسندیدہ علاقہ کون سا ہے, بول دیں سارے عرب. تو مومن کا دل بھی عرب میں لگتا ہے, اس کو بھی مزہ آتا ہے کہ چھٹیاں میں نے عرب میں جا کے منانی ہے, یا میں نے فیوچر میں ایسے ملکوں میں رہنا جہاں میرے بچوں کو عربی آ جائے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ کھجور کا درخت بغیر مالی کے بھی اگ جاتا ہے, حفاظت نہ بھی کی جائے تو اگ جاتا ہے. اسی طرح اگر مومن کے اندر ایمان ہے نا تو باہر سے کوئی اس کی سرپرستی نہ بھی کرے, कोई मोटिवेशन ना भी मिले तो कायम रहता है। फिर दरख्त फल देता है, पैसे नहीं मांगता। कभी हुआ एक पाउंड दो फिर एक सेब दूंगा, कभी ऐसा हुआ? बस उसने देना है। इसी तरह मोमिन बगैर सिले के लोगों को फायदा देता है। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि जो खजूर का साया है ना, वो इतना गहरा नहीं होता कि बेकार लोग उसके नीचे बैठे ज़्यादा देर। मोमिन भी बेकार वक्त ज़ाया करने वालों को अपने इर्द गिर्द जगह नहीं देता, क्योंकि उसको पता कि लोगों ने ना काम करना है ना मुझे करने देना। खजूर का दरख्त गर्म इलाकों में ज़्यादा उगता है। इसी तरह मोमिन भी ना मवाफिक हालात, एडवर्स कंडीशंस, चैलेंजेस में ज़्यादा काम करता है। खजूर की शाखें ज़्यादा देर तक परिंदों को बैठने नहीं देती, मोमिन के दिल पर भी शैतान नहीं बैठता। दरख्त फल सबको देता है, मखसूस लोगों को नहीं, तो मोमिन भी तासुब से बचते हुए फ़ायदा सबको देता है। अब ये कितनी हो गई बातें, अब आप इस आयत को समझें तो आपको कैसी लगेगी? क्या अलम तर कैफ ضرب الله مثلا كلمة طيبة। अब अपने दिल से पूछिए, क्या मैं ऐसी हूँ जैसा अल्लाह ने यहाँ कहा?
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون।